ये आकाशवाणी है, अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक साइप्रस यात्रा के दौरान लिमासोल में व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 वर्षों में साइप्रस में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा की शुरुआत व्यापार गोलमेज सम्मेलन से करना इस बात को दर्शाता है कि भारत आर्थिक जुड़ाव को कितना महत्व देता है। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार $150 मिलियन है।
साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री और बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
मैरिटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसका नया ऑर्डर दिया है।
प्रधानमंत्री ने साइप्रस को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI नेटवर्क में लाने के लिए हो रही चर्चाओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज और भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौते का भी स्वागत किया। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने सभी शीर्ष उद्यमियों को भारत आने और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। आगामी जनगणना की अधिसूचना आज राजपत्र में जारी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहली बार इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आज पटना में जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास पर पहली परामर्श कार्यशाला आयोजित करेगा। ये उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय वार्ता पूर्वी भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग नीति को आकार देने में एक बड़ा कदम है। कार्यशाला में वरिष्ठ टेक्नोक्रेट, विषय विशेषज्ञ और राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। इस सत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 11 वर्षों के कार्गो विकास पर बल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में पुणे के निकट मावल तालुका में कल इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इसमें लगभग 20 से 25 पर्यटकों के नदी में डूबने की आशंका है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। गुजरात के अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण का कार्य जारी है। इसके लिए मृतकों के रिश्तेदारों से अब तक कुल 250 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 62 DNA का मिलान हो चुका है और 35 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी का भी DNA मिलान हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच हादसे की जांच कर रहे अधिकारियों ने कल कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स के मिलने की पुष्टि की। ये बॉक्स दुर्घटना के संभावित कारण की पहचान में मदद करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कहा है कि हवाई सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। तेहरान में भारतीय दूतावास ईरान में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दूतावास की मदद से विद्यार्थियों को ईरान में अधिक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही अन्य व्यावहारिक विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए दूतावास सामुदायिक नेताओं के भी संपर्क में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।